एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान कोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
तो आज जो सामग्री हमारे पास है वो हमें करीब 2500 साल पीछे ले जा रही है ना, प्राचीन यूनान।
हाँ बिल्कुल, ये नोट्स और लेख वगैरह कोलोफोन के ज़ेनोफिनस पर है।
ज़ेनोफिनस, ये नाम शायद बहुत लोगों ने सुना भी नहीं होगा।
हो सकता है, लेकिन ये ऐसे विचारक थे जिन्होंने अपने समय की सोच को काफी हद तक झकझोरा था।
अच्छा, तो हमारा काम आज यही है कि इन स्रोतों को देखें और समझें कि ज़ेनोफिनस कौन थे, क्यों जरूरी थे और क्या आज भी उनकी बातें मायने रखती हैं।
बिल्कुल, और ज़ेनोफिनस की कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि वो सिर्फ मतलब दार्शनिक ही नहीं थे, वो कवि थे, यात्री थे
और आलोचक भी थे, जैसा इन नोट्स में लग रहा है, अपने समय के रीति रिवाजों के।
हाँ हाँ, मुखर आलोचक, जो स्थापित मान्यताएं थीं, खासकर देवताओं को लेकर या ज्ञान को लेकर, उनको उन्होंने सीधी चुनौती दी।
तो लगता है कि वो वाकई लीक से हटकर सोचते थे। चलिए फिर इन्हीं स्रोतों के सहारे उनकी दुनिया में चलते हैं। उनका समय लगभग 570 ईसा पूर्व से 475 ईसा पूर्व, यही है ना?
हाँ, मोटे तौर पर यही माना जाता है। और ये वो दौर था यूनान के इतिहास में जिसे आर्केइक काल का आखिरी हिस्सा और क्लासिकल युग की एकदम शुरुआत कह सकते हैं।
मतलब एक तरह का बदलाव का समय।
बिल्कुल, बौद्धिक उथल पुथल का समय था, दर्शन का जन्म हो रहा था, खासकर आयोनिया में, आजकल के तुर्की के तट पर, जहां ज़ेनोफिनस पैदा हुए थे।
आयोनिया, वहां तो और भी विचारक हुए ना?
हाँ हाँ, वहीं से पहले दार्शनिक निकले जिन्हें हम प्री सुक्राटिक या पूर्व सुक्राती कहते हैं।
सुकरात से पहले वाले।
जी, ये वो लोग थे जो दुनिया को समझने के लिए पुरानी कहानियों मतलब मिथकों से हट रहे थे।
अच्छा, मिथोस से लोगोस की तरफ, तर्क की तरफ।
बिल्कुल सही, मिथोस की जगह लोगोस यानी तर्क और अवलोकन का इस्तेमाल कर रहे थे। ये बहुत बड़ा शिफ्ट था सोच में, और ज़ेनोफिनस इसी माहौल का हिस्सा थे।
और नोट्स में ये भी है कि उस समय के राजनीतिक हालात भी शांत नहीं थे, फारसी साम्राज्य फैल रहा था।
हाँ, ये एक और अहम बात है, फारसी साम्राज्य पश्चिम की तरफ बढ़ रहा था और आयोनिया बिल्कुल उनके रास्ते में था। ज़ेनोफिनस का अपना शहर कोलोफोन, उस पर भी फारसियों का कब्जा हो गया।
ओह अच्छा, तो क्या इसी वजह से उन्हें शहर छोड़ना पड़ा?
ज्यादातर यही माना जाता है, लगभग 546 ईसा पूर्व के आसपास, और ये उनके जीवन का कह सकते हैं एक टर्निंग पॉइंट था। फिर वो कभी एक जगह टिके नहीं।
मतलब निर्वासन में ही ज्यादातर जिंदगी बीती।
हाँ, इन स्रोतों के हिसाब से और उनके खुद के कहे के मुताबिक करीब 67 साल, सोचिए।
67 years,
हाँ
ये तो पूरी वयस्क जिंदगी ही हो गई लगभग।
हाँ एक घुमक्कड़ कवि और दार्शनिक की तरह पूरे यूनानी जगत में घूमते रहे। सिसली गए, दक्षिणी इटली जिसे मैग्ना ग्रेसिया कहते थे, शायद मुख्य यूनान भी गए हों।
और गुजारा कैसे करते थे?
वो अपनी कविताएं सुनाते थे दावतों में, मतलब सिंपोजिया में या सार्वजनिक सभाओं में, इसी से उनका काम चलता था।
ये दिलचस्प है, मतलब आजकल के स्टैंड अप फिलोसोफर जैसे, घूम घूम कर अपने विचार फैलाना।
हाँ हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए, और इस घूमने फिरने का जाहिर है उनकी सोच पर बहुत असर पड़ा होगा।
हाँ, अलग अलग जगहें, अलग अलग लोग, उनकी मान्यताएं।
बिल्कुल, उन्होंने देखा होगा कि कैसे थ्रेशियन लोग अपने देवताओं को गोरा और लाल बालों वाला बनाते हैं, और इथियोपियन उन्हें काला और चपटी नाक वाला।
ओहो, तो यहीं से उन्हें वो आइडिया आया होगा कि हम अपनी ही शक्ल में भगवान को गढ़ते हैं।
हाँ, बहुत संभव है, इसी अनुभव ने उनकी आलोचना को और मजबूत किया होगा।
तो आते हैं उनके मुख्य विचारों पर। सबसे पहले तो यही, देवताओं की आलोचना, ये उनके काम का केंद्र लगता है ना?
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो शायद पहले विचारक थे जिन्होंने देवताओं के मानव रूपी चित्रण की इतनी व्यवस्थित आलोचना की।
मानव रूपी मतलब?
इंसानों जैसा दिखाना। हाँ बिल्कुल, उस समय के जो सबसे बड़े कवि थे होमर और हेसियोड, उनकी कहानियों में देवता क्या करते थे, ईर्ष्या करते थे, लड़ते थे, धोखा देते थे, मतलब सारी इंसानी कमजोरियां उनमें थीं।
और ये कहानियां तो यूनानी संस्कृति की नींव थीं।
बिल्कुल, और ज़ेनोफिनस ने कहा, ये सब बकवास है, ये देवताओं का अपमान है, देवता ऐसे नहीं हो सकते, ये हमें कुछ सिखाता नहीं बल्कि गुमराह करता है।
और यहीं पर उनका वो घोड़ों और बैलों वाला कटाक्ष आता है, वो क्या था ठीक से?
हाँ, वो कमाल की लाइन है, उन्होंने कहा, लेकिन अगर मवेशियों, घोड़ों और शेरों के हाथ होते और वे इंसानों की तरह चित्र बना सकते, कलाकृतियां बना सकते, तो घोड़े अपने देवताओं को घोड़ों जैसा बनाते और बैल बैलों जैसा, हर कोई अपने देवताओं को अपने ही शरीर जैसा आकार देता।
क्या बात है, जबरदस्त अवलोकन
है ना। मतलब हम अपनी सीमाएं, अपनी शक्लो सूरत देवताओं पर थोप देते हैं।
तो अगर देवता इंसानों जैसा नहीं है तो फिर कैसे हैं ज़ेनोफिनस के हिसाब से?
उन्होंने एक बिल्कुल अलग क्रांतिकारी विचार दिया। उन्होंने कहा एक ही ईश्वर है, वो सबसे महान है देवताओं और मनुष्यों में।
एक ही ईश्वर, मतलब एकेश्वरवाद।
हाँ, ये एकेश्वरवाद की तरफ एक बहुत बड़ा इशारा था। उन्होंने कहा ये ईश्वर शाश्वत है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, वो बदलता नहीं है। और सबसे जरूरी बात, वो न तो दिखने में न सोचने में इंसानों जैसा है।
मतलब वो अमूर्त है, कोई शक्ल नहीं।
बिल्कुल, वो पूरी तरह से अलग है, सर्वव्यापी है, मानवीय भावनाओं, ईर्ष्या, क्रोध, इन सब से परे है। उन्होंने ईश्वर को मानवीय कल्पना की जकड़ से आजाद कर दिया एक तरह से।
ये तो सच में क्रांति थी उस समय के हिसाब से। अच्छा, ये तो ही धर्म की बात, लेकिन इन नोट्स में ज्ञान पर भी उनके विचारों का जिक्र है, एपिस्टेमोलॉजी।
हाँ, ज्ञानी मीमांसा, यानी ज्ञान का सिद्धांत। हम क्या जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, और क्या हमारे जानने की कोई सीमा है?
अच्छा,
ज़ेनोफिनेस इस मामले में भी बहुत आगे थे। उन्होंने कहा कि देखो भाई, इंसान होने के नाते हमारी समझ की सीमाएं हैं, खासकर जब बात देवताओं की हो या ब्रह्मांड के अंतिम सत्यों की। तो हमें पक्का वाला निश्चित ज्ञान, जिसे यूनानी एपिस्टेमे कहते थे, वो नहीं मिल सकता।
मतलब 100% गारंटी वाला ज्ञान नहीं मिल सकता।
हाँ, हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, एक राय बना सकते हैं, एक विश्वास रख सकते हैं, जिसे वो डॉक्सा कहते थे। हो सकता है हमारी राय सच के करीब हो, लेकिन हम ये दावे से नहीं कह सकते कि यही अंतिम सच है।
उनका वो कथन भी तो है कि अगर कोई सच बोल भी दे तो उसे पता नहीं चलेगा।
हाँ बिल्कुल, निश्चित सत्य को किसी इंसान ने नहीं देखा है, क्योंकि अगर कोई संयोग से पूरी सच्चाई कह भी दे तो भी उसे खुद नहीं पता होगा कि वो सच है। हर चीज पर सिर्फ विश्वास, डॉक्सा ही बुना जा सकता है।
ये तो काफी संशयवादी नजरिया लगता है। क्या वो हर चीज पर शक करते थे?
देखिए, शक करने का मतलब ये नहीं कि कोशिश ही छोड़ दो। वो मानवीय ज्ञान की सीमाओं को लेकर बहुत सजग थे, विनम्र थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने दुनिया को समझने की कोशिश बंद कर दी।
हाँ, ये बात सही है, बल्कि उन्होंने अवलोकन पर जोर दिया, जैसा वो जीवाश्म वाले मामले में दिखता है।
वो तो कमाल ही है। सोचिए, 2500 साल पहले उन्होंने पहाड़ों पर, समुद्र से दूर, समुद्री सीपियों और मछलियों के जीवाश्म देखे।
और उससे क्या नतीजा निकाला?
उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये जमीन कभी समुद्र के नीचे थी, यानी धरती स्थिर नहीं है, भूभाग और समुद्र बदलते रहते हैं। ये बिना किसी आधुनिक विज्ञान के सिर्फ देखकर तर्क से नतीजा निकालना, ये वैज्ञानिक सोच की शुरुआत है एक तरह से।
तो वो सिर्फ अमूर्त बातों में नहीं उलझे रहे, बल्कि दुनिया को ध्यान से देख भी रहे थे।
हाँ, और सिर्फ प्रकृति को ही नहीं, समाज को भी।
अच्छा हाँ, वो एथलीटों वाली आलोचना, वो क्या थे?
उन्होंने देखा कि यूनानी समाज में एथलीटों को, ओलंपिक विजेताओं को जरूरत से ज्यादा सम्मान दिया जाता है।
हाँ, वो तो हीरो माने जाते थे।
और ज़ेनोफिनेस ने कहा, भाई ठीक है, शारीरिक ताकत अच्छी बात है, लेकिन बुद्धि, विवेक, ज्ञान, ये ज्यादा जरूरी है समाज के लिए। उन्होंने लिखा कि मेरी बुद्धिमत्ता शहर के लिए किसी पहलवान की मांसपेशियों से कहीं ज्यादा फायदेमंद है।
ये कहना तो उस समय बहुत हिम्मत का काम रहा होगा।
बिल्कुल, वो स्थापित मूल्यों को सीधी चुनौती दे रहे थे।
सही में, हर मोर्चे पर सवाल। अच्छा, उनकी रचनाओं की बात करें, नोट्स कहते हैं कि पूरा कुछ तो बचा नहीं है।
नहीं, दुर्भाग्य से हमें सिर्फ टुकड़े मिलते हैं, फ्रैगमेंट्स। बाद के लेखकों ने अपनी किताबों में उनके कोटेशंस दिए, वहीं से हमें पता चलता है। करीब 45 फ्रैगमेंट्स हैं शायद।
और उन्होंने लिखा किस तरह, गद्य में या पद्य में?
कविता के रूप में। उस समय दर्शन को कविता में लिखना आम था। उनकी दो मुख्य तरह की कविताएं थीं। एक तो थी सिल्लोए।
सिल्लोए, ये क्या है?
ये व्यंग्य कविताएं थीं। इनमें वो होमर, हेसियोड की कहानियों का, देवताओं के मानव रूपी चित्रण का, या कुछ और दार्शनिकों का भी मजाक उड़ाते थे।
अच्छा, व्यंग्य के जरिए आलोचना।
हाँ, और दूसरी तरह की कविताएं थीं, एलिजीज या शोक गीत, और दूसरी गंभीर कविताएं। उनमें उन्होंने ईश्वर, ज्ञान, समाज पर अपने गंभीर विचार रखे। प्रकृति के बारे में भी लिखा, जैसे इंद्रधनुष कैसे बनता है वगैरह, पर जोर हमेशा तर्क पर रहा।
अगर हम उनकी तुलना करें उस समय के और विचारकों से, जैसे थेल्स वगैरह, तो ज़ेनोफिनेस अलग कैसे थे?
जो माइलेशियन विचारक थे, जैसे थेल्स या एनैक्सिमेंडर, वो ज्यादातर ये जानने में लगे थे कि दुनिया किस चीज से बनी है। कोई कहता था पानी, कोई हवा, वो मूल तत्व आर्के खोज रहे थे। ज़ेनोफिनेस का फोकस इस पर कम था। उनका ध्यान ईश्वर की सही प्रकृति क्या है और हम कितना जान सकते हैं इस पर ज्यादा था। और हाँ, वो होमर जैसे कवियों के सीधे आलोचक थे जिनका बाकी सब सम्मान करते थे।
और क्या उनके विचारों ने आगे किसी को प्रभावित किया? वो एलियाटिक स्कूल का नाम आया था नोट्स में।
हाँ, माना जाता है कि उनका जो एक ईश्वर का विचार था, जो बदलता नहीं, हमेशा एक जैसा रहता है, उसने पारमेनाइडिस और एलियाटिक स्कूल की सोच पर असर डाला।
पारमेनाइडिस वो कौन थे?
वो एलियाटिक स्कूल के मुख्य विचारक थे। वो मानते थे कि असलियत में सब कुछ एक ही है और वो कभी बदलता नहीं। ज़ीनोफेनिस ने शायद सीधे स्कूल शुरू नहीं किया, पर उनके विचारों ने एक तरह से रास्ता बनाया।
तो उनकी विरासत तो काफी फैली हुई लगती है। धर्म, दर्शन, ज्ञान का सिद्धांत, यहां तक कि विज्ञान की शुरुआती सोच में भी।
बिल्कुल, मानव रूपी देवताओं की आलोचना ने बाद के दार्शनिकों जैसे प्लेटो और अरस्तु को भी सोचने पर मजबूर किया। पश्चिम में जो एकेश्वरवाद का विचार पनपा, उसमें भी उनका योगदान माना जाता है।
और वो ज्ञान वाला संशयवाद कि हमें सब कुछ नहीं पता।
हाँ, वो भी बहुत अहम है। इसने बाद के संशयवादी स्कूलों को प्रेरणा दी और एपिस्टेमोलॉजी को दर्शन की एक अलग शाखा बनाने में मदद की। ये सवाल कि हम क्या जान सकते हैं, इसकी सीमाएं क्या हैं, ये आज भी दर्शन का बड़ा सवाल है।
और वो जीवाश्म वाली बात, वो दिखाती है कि कैसे देखकर और सोचकर हम दुनिया के बारे में सीख सकते हैं।
सही कहा। आज भी जब हम ईश्वर के बारे में सोचते हैं, तो ज़ेनोफेनिस की ये चेतावनी याद आती है कि कहीं हम अपनी ही छवि तो नहीं देख रहे। ज्ञान और विश्वास में क्या फर्क है, ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है।
नोट्स में कुछ और मजेदार बातें भी थी, जैसे वो 67 साल का निर्वासन, ये तो अपने आप में कहानी है।
हाँ, वो शायद सबसे ज्यादा यात्रा करने वाले प्राचीन दार्शनिकों में से थे, और ये भी कि वो अपनी कविताएं दावतों में सुनाते थे, मतलब फिलॉसफी को पार्टियों तक ले गए।
हाँ, लेकिन जाहिर है इतने क्रांतिकारी विचारों का विरोध भी तो हुआ होगा।
बिल्कुल हुआ होगा। जो पारंपरिक पुजारी थे या होमर हेसियोड को मानने वाले कवि थे, वो जरूर नाराज हुए होंगे। धर्म पर सवाल उठाना, सबसे बड़े कवियों पर सवाल उठाना, ये आसान नहीं था।
और विद्वानों में भी बहसें, जैसे वो एकेश्वरवादी थे या कुछ और।
हाँ, ये बहस आज तक चलती है। क्या वो पक्के तौर पे मोनोथीस्ट थे या हेनोथीस्ट? मतलब एक मुख्य ईश्वर को मानते थे पर बाकियों का अस्तित्व नकारते नहीं थे। उनका वो कहना देवताओं और मनुष्यों में सबसे महान, ये थोड़ा खुला छोड़ देता है सवाल।
और क्या उनकी कोई एक पूरी फिलॉसफी थी या वो बस एक आलोचक थे?
ये भी एक सवाल है। क्या उन्होंने एक सुसंगत सिस्टम बनाया था, या वो मुख्य रूप से एक सामाजिक और धार्मिक आलोचक थे जो घूम घूम कर अपनी बात कहते थे? कुछ ये भी कहते हैं कि अगर वो ज्ञान को लेकर इतने शक्की थे, तो ईश्वर के बारे में इतने यकीन से कैसे बोल सकते थे?
ये सारे सवाल ही दिखाते हैं कि वो कितने सोचने पर मजबूर करने वाले विचारक थे। इन सभी स्रोतों को देखकर मुझे तो सबसे बड़ी बात यही लगती है कि ज़ेनोफेनिस हमें यही याद दिलाते हैं कि सुनो, जो मान लिया गया है, जो सब कह रहे हैं, उस पर सवाल उठाओ।
हाँ, और उनकी यात्राएं ये सिखाती हैं कि दुनिया देखो, अलग अलग नजरिए समझो, इससे तुम्हारी सोच खुलेगी। उनकी विरासत शायद इसी विनम्रता में है कि भाई, मान लो कि हम सब कुछ नहीं जानते।
लेकिन जानने की कोशिश करते रहो।
हाँ, हमेशा बेहतर समझ की तलाश जारी रखो। उन्होंने हमें सिखाया कि अपनी मान्यताओं के आईने से बाहर निकलो और तर्क का रास्ता अपनाओ, भले ही वो मुश्किल हो।
सोचने वाली बात है।
और अंत में शायद यही सवाल बचता है जो इन सारे स्रोतों का निचोड़ है। क्या आज हम अपने समय में अपनी सबसे गहरी मान्यताओं पर, चाहे वो धर्म की हो, समाज की हो, राजनीति की, क्या हम उन पर उसी हिम्मत से सवाल उठाने को तैयार हैं जैसे ज़ीनोफेनिस ने 2500 साल पहले किया था?
ये सचमुच सोचने वाली बात है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।